हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अगले दिन रसोई से खाने की हल्की सी खुशबू आ रही थी। शाम का समय था और लिविंग एरिया में अंबिका चुपचाप सोफे के कोने में बैठी थी। हाथ में एक किताब थी, लेकिन आंखें बार बार उसी पन्ने पर अटक जातीं, जैसे उसका मन कहीं और भटक रहा हो, कहीं बहुत दूर या शायद किसी बहुत करीब इंसान के पास। इसी बीच रसोई में खड़ी मिशिका फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी। आवाज़ धीमी थी, लेकिन लिविंग रूम में सन्नाटा इतना था कि अंबिका के कानों तक हर शब्द पहुँच रहा था। हाँ माँ, मैं समझ रही हूँ, पर आप प्लीज़ परेशान मत होइए। मिशिका की आवाज़ में चिंता साफ झलक रही थी। कुछ देर बाद उसकी टोन और धीमी हो गई, जैसे वो कोई राज छुपाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन अंबिका के कान अब पूरी तरह चौकस थे। क्या वो ऑफिस भी नहीं जा रहे? सबसे मिलना जुलना भी बंद और बस शराब? अरे माँ, ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? इतने सालों में तो उन्होंने आज तक कभी भी ऐसा नहीं किया। मिशिका की आवाज़ में ये सुनते ही अंबिका का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। क्यों, वो ऐसा क्यों कर रहा है? उसके जहन में सवाल गूंजा। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि वेदांश ने अपना ये हाल क्यों बना लिया होगा। उसे क्या फ़र्क पड़ता है मेरे होने या ना होने से? वो तो चाहता था मैं जाऊं। फिर मैं क्यों इतना सोच रही हूँ? ये सब मेरी वजह से तो नहीं हो सकता। उसके अंदर एक हल्का सा डर और बेचैनी दोनों घुल गए। हाँ, ज़रूर कोई और बात होगी, ये सब मेरी वजह से नहीं हो सकता। उसका मन हो रहा था कि अभी वहाँ जाकर मिशिका से पूछ ले पूरी सच्चाई, वेदांश से जुड़ी हर एक बात। लेकिन फिर उसके होंठ जैसे सिल गए, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। उसे ये नहीं समझ में आया, आखिर वो क्या बोलकर मिशिका से वेदांश के बारे में पूछेगी? और क्यों उसे उसकी फ़िक्र हो रही थी, वो ये बिल्कुल भी जताना नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ वेदांश का मैंशन अब वीरान सा था। उसकी हालत पिछले एक हफ्ते में इतनी गिर चुकी थी कि उसे पहचानना मुश्किल था। चेहरे पर दाढ़ी के उलझे हुए बाल, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और हाथ में हमेशा एक अधूरी शराब की बोतल। उसने पिछले 7 दिनों में एक भी कौर खाना नहीं खाया था, बस विस्की, रम, जो भी हाथ लग जाए, और वही उसका सहारा था। उस रात तेज बारिश हो रही थी। खिड़की से आती ठंडी हवा कमरे में फैली शराब की गंध में मिलकर एक अजीब सी खामोशी बना रही थी। वेदांश का शरीर अब शराब भी नहीं सह पा रहा था। उसका सिर घूम रहा था, सांसें भारी हो रही थीं। अचानक उसके कदम लड़खड़ाए और वो सीधे फर्श पर गिर पड़ा। उसके बॉडीगार्ड अवंत ने उसे ऐसे जमीन पर गिरते हुए देखा तो वो उसकी ओर दौड़ पड़ा। सर, सर, आप ठीक हैं? क्या हुआ आपको? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि वेदांश अब बेहोश हो चुका था। कुछ ही मिनटों में उनकी कार हॉस्पिटल की तरफ भाग रही थी। बारिश की बूंदें शीशे पर बेतहाशा टकरा रही थीं, जैसे वक्त भी वेदांश से आगे निकलने की कोशिश कर रहा हो। वेदांश की हालत खराब थी और अभी बद से बदतर होती जा रही थी। हॉस्पिटल में वेदांश की माँ वहाँ पहले से मौजूद थीं। अपने बेटे को स्ट्रेचर पर बेहोश ले जाते देख उनका चेहरा पहली बार डर और बेबसी से भर गया। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? ये क्या दिन देखना पड़ रहे हैं मुझे? इससे अच्छा तो मुझे कुछ हो जाता, लेकिन मेरे बच्चे ठीक रहते। रोते रोते उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। बस एक ही ख्याल दिमाग में आया, मिशिका को फ़ोन करती हूँ। अक्षय का अपार्टमेंट। मिशिका का फ़ोन टेबल पर रखा था। रसोई में बर्तन धोते हुए उसका हाथ पूरा भीगा हुआ था, और तभी फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन पर साफ लिखा था, माँ, दी, आप देख लीजिए ना किसका फ़ोन है, मेरा हाथ गंदा है, मैं अभी बर्तन धो रही हूँ। मिशिका ने रसोई से आवाज़ लगाई। रसोई से आई हुई मिशिका की आवाज़ सुनकर अंबिका ने टेबल पर रखा हुआ उसका फ़ोन उठाया। मिशिका का मोबाइल फ़ोन हाथ में लेकर कुछ सेकंड वो सोचती रही। माँ से तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, उनसे बात करने में क्या हर्ज है? अंबिका के कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से उसकी माँ की घबराई हुई आवाज़ आई, वेदांश ठीक नहीं है, उसे अस्पताल ले जाया गया है। मिशु बेटा, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसे फ़ोन करूँ। यहाँ पर सब लोग तो बस बॉडीगार्ड और ऑफिस के हैं, कोई अपना नहीं है। देखो, जो भी गुस्सा है ना, उसे भूल जाओ अभी, वो तुम्हारा इकलौता भाई है, चाहे जितना भी बुरा हो, लेकिन तुम भी उसे मरते हुए तो नहीं देख सकती। उसकी हालत कब बहुत ख़राब है, और अगर हो सके तो अंबिका को भी बता देना, वो उसे ही याद कर रहा था, बार बार उसका नाम ले रहा था। उसने खुद ही अपना ये हाल बनाया है। पता नहीं क्यों अंबिका उससे दूर चली गई। बेटा जल्दी आ जाओ, यहाँ सिटी हॉस्पिटल आना है। ये सब सुनते ही अंबिका के हाथ से फोन लगभग छूट गया। उसका दिमाग खाली हो गया, जैसे किसी ने सारे शब्द खींच लिए हों। वो कुछ बोले बिना ही फोन धीरे से टेबल पर रख कर एकदम से खड़ी हो गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, बस एक ही ख्याल, वेदांश। उसने तुरंत रूम में जाकर अपना पर्स उठाया, बिना किसी को कुछ बताए दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। चारों तरफ दवाइयों की गंध, मशीनों की बीप बीप और दरवाज़ों के खुलने बंद होने की आवाज़ें। अंबिका वहां पहुंची तो डॉक्टर किसी से गंभीर लहजे में बात कर रहे थे। पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, पिछले कई दिनों से उसने कुछ खाया नहीं, सिर्फ अल्कोहल, इससे लिवर और हार्ट पर बुरा असर पड़ा है। ये सुनते ही अंबिका की आंखों में आंसू भर आए। नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, ऐसे नहीं जा सकते तुम वेदांश, तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने हैं, मेरा सामना करना है, तुम इन सब से ऐसे नहीं बच सकते। उसके कदम अपने आप वार्ड के कांच वाले हिस्से की तरफ बढ़े और उस कांच की खिड़की से झांक कर देखा तो वहां अंदर वेदांश बेहोश पड़ा था। चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क, हाथ में ड्रिप, शरीर एकदम बेजान। उसके सीने पर भी मशीन से जुड़े हुए कुछ तार लगे हुए थे और उसकी सांसें बहुत ही धीमी चल रही थीं। वो भी देखने में एकदम बेजान और कमजोर लग रहा था। अंबिका ने उस कांच पर हाथ रखा जैसे दूरी कम करने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंखों में जो आंसू कब से भरे हुए थे वो अब एक एक कर उसके गालों पर गिरने लगे। वेदांश की माँ उसके पास आई, उनकी आभास कांप रही थी। अंबिका बेटा, देख रही हो ना, उसने खुद अपना ये हाल कर लिया, बस तुम्हें याद कर करके। क्यों चली गई थी तुम उसकी जिंदगी से? तुम्हारे आने के बाद तो वो इंसान बना था और तुम्हारे जाने के बाद फिर से। अंबिका को समझ नहीं आया कि वेदांश की माँ के इन सवालों का वो क्या जवाब दे, इसलिए उसने धीरे से अपना सिर झुका लिया, पर उसकी आंखें वेदांश से हट नहीं रही थीं। उसका मन बार बार कह रहा था, तुम तो मुझे छोड़कर खुश थे ना? नहीं, झूठ, अगर खुश होते तो ये तुम्हारा ये हाल क्यों होता? क्यों तुमने मुझे खुद से दूर जाने को कहा था? क्यों? मशीन की बीप उसके दिल की धड़कन से मिल रही थी, दोनों ही डरावनी तरह से धीमी चल रही थी। रात के वक्त अस्पताल का कॉरिडोर हल्के पीले बल्ब की रोशनी में डूबा हुआ था। कमरे के बाहर कुछ लोग धीमी आवाज में बात कर रहे थे, कुछ कुर्सियों पर बैठे थे तो कुछ खड़े खड़े मोबाइल में लगे हुए। अंदर आईसीयू के ठीक बाहर अंबिका और वेदांश की माँ चुपचाप बैठे हुए थे। माँ के चेहरे पर पूरी रात की थकान और चिंता साफ झलक रही थी, जबकि अंबिका का चेहरा, वो पूरी रात बिना पलक झपकाए बस एक ही खिड़की की ओर देखती रही थी, वही खिड़की जिसके पार उसका वेदांश पड़ा हुआ था, ऑक्सीजन मास्क और तमाम मशीनों के बीच। रात के वक्त अंबिका के वहां आने के लगभग 2-3 घंटे के बाद मिशिका, अक्षय, कार्तिक और देविका भी आ गए थे।
देविका, मिशिका और अक्षय साथ में आए थे, जबकि कार्तिक अलग से आया हुआ था और वो थोड़ा पहले आ गया था, लेकिन वो दूर खड़ा था और वेदांश के लिए काम करने वाले लोगों से ही बात कर रहा था, क्योंकि वो उसके फैमिली मेंबर नहीं था, उसके लिए काम ही करता था। अक्षय ने वहां पर आते ही अंबिका से कहा, दीदी आप यहाँ क्या कर रही हैं? वहां घर पर हम सब आपके लिए इतना परेशान हो गए थे, इतना ढूंढा हमने आपको और आप यहाँ। वो तो अच्छा हुआ मिशिका ने अपनी माँ को फोन करके पूछ लिया आपके बारे में, नहीं तो आपको पता है हम सब। अंबिका ने अक्षय की तरफ देखते हुए कहा, वेदांश मेरे पति हैं अक्षय, ये बात तुम्हें भी पता है, इसलिए अगर उनकी ऐसी हालत है तो मुझे और कहाँ होना चाहिए। अंबिका का ऐसा जवाब सुनकर अक्षय एकदम चुप हो गया। वो आगे कुछ और बोल पाता उससे पहले ही मिशिका ने भी उसे चुप रहने का इशारा किया और साइड में ले जाकर उससे इस बारे में बात करने लगी। वहीं देविका अंबिका के साथ बैठी हुई थी, उसे इन सब के बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन वो अपनी बहन की आंखों में उस इंसान के लिए फिकर देख पा रही थी जिसके साथ वो इतने दिन रही थी। साथ ही देविका ने वहां कॉरिडोर की शुरुआत में बॉडीगार्ड और सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ खड़े होकर बात कर रहे कार्तिक को भी नोटिस कर लिया था, लेकिन फिलहाल उसने कार्तिक को पूरी तरह से इग्नोर किया था और कार्तिक भी बार बार उसकी तरफ मुड़कर देख रहा था, लेकिन देविका ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे कि वो उसे जानती ही ना हो। रात भर उन सबके बीच बैठी हुई अंबिका ने मन ही मन भगवान से बस एक ही दुआ मांगी थी, चाहे कुछ भी हो, लेकिन बस वेदांश को कुछ न हुआ हो, वो उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। टू बी कंटिन्यूड।